हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सब का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान की ओर से। सतीश सीतमर सीता देवी और सतीश का घर के अंदर आज सत्संग के लिए उन्होंने हमको आज सेवा का अवसर दिया आप सबको भगवान की कथा सुनाने का। और आप सब यहां पधारे हैं आपका स्वागत है। एक श्लोक भगवत गीता रखी हुई है। भगवत गीता का अर्थ है भगवान ने जो गीत गाया। दो शब्द है भगवत और गीता। इन दो शब्दों में लोग प्रायः गीता गीता कहते हैं लेकिन गीता से भगवत शब्द ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गीत का मतलब गीत कोई भी गाता है लेकिन ये भगवान का गीत है। भगवत गीता भगवान का गीत है इसलिए मुख्य है। तो ये भगवान का गीत है सॉन्ग ऑफ गॉड। तो भगवत गीता का ये सातवां अध्याय हमारे सामने है। मेरे ख्याल में सातवां अध्याय हरे कृष्ण नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एक ये श्लोक निकला हुआ है अपने आप इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ सातवां अध्याय भगवद गीता का सातवां अध्याय भगवत ज्ञान। असल में भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्यायों में से 18 रखते हैं साबुन डब्बा होता है ना डब्बा बॉक्स ज्वेलरी का उसका ऊपर ढकना होता है एक नीचे ढकना होता है और दोनों ढकनों के बीच में सोना रखते हैं। तो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय ऊपर का ढकना है लास्ट के 6 अध्याय नीचे का ढकना है अपर लिड और लोअर कंटेनर। लेकिन बीच के 6 अध्याय जो हैं वो इसमें असली जैम है हीरा है। तो ये सातवां अध्याय ये 6 अध्याय बीच में क्या है व्हाट आर दिस 6 चैप्टर ये भक्ति के 6 अध्याय। भगवत गीता भक्ति का शास्त्र है भागवत शास्त्र। तो ये सातवां अध्याय है। सातवें अध्याय का भी ये जो श्लोक है ये आगे श्लोक से चलता आ रहा है। आगे का श्लोक है यहां से कथा शुरू होती है। यहां से शुरू होती है कामेश तेष्टिर्हृत ज्ञाना परपद्यन्ते अन्य देवताः। कामेश कामेश का मतलब भोग की इच्छा। इस दुनिया में लोग कुछ सुख चाहते हैं कुछ भोग चाहते हैं तो उस भोग की इच्छा पूरी करने के लिए कहां जाते हैं कामेश ते हृत ज्ञाना उनका असली ज्ञान उनसे चुरा लिया जाता है। हृत ज्ञाना मतलब ज्ञान उनका कोई चुरा लेता है। कौन चुरा लेती है माया चुरा लेती है। तो ज्ञान क्या है जो चुरा लेती है वो इससे पहले का श्लोक है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते बहुत सारे जन्मों के बाद
कई जन्म लग जाते हैं। जो ज्ञानवान होता है वो इस निर्णय के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर पहुंचता है, इस नतीजे के ऊपर पहुंचता है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री वासुदेव कृष्ण सर्वस्य है, सब कुछ है, इज एवरीथिंग। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसका अर्थ आप जो यहां बैठे हो और जो ये मानते हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम पुरुष भगवान है, इसका अर्थ है वासुदेव सर्वमिति। इसका मतलब बहुत जन्मों में मैं आपने ज्ञान अर्जित किया है तब आज इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हो। हाँ, यू हैव टेकन दिस डिसीजन, ये आपने अब निर्णय कर लिया है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन का लक्ष्य। इसका मतलब बहुत जन्मों का ज्ञान इकट्ठा हुआ है तब ये नतीजा निकला। दिस रिजल्ट इज आफ्टर मैनी मैनी बर्थ्स, बहुत जन्मों के ज्ञान के बाद ये डिसीजन लेना पड़ता है। माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का क्या अर्थ होता है? प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है पांव पकड़ना, परपना, प्रपद्यन्ते। ये पांव नीचे ऐसे होता है ना, ये नीचे तलवा, ऊपर पांव, और फिर ये ऐसे ऊपर पांव ऐसे ना, ये जगह, इसको बोलते हैं परपना, इसको पकड़ना, भगवान के जो पांव पकड़ता है, परपना। माम प्रपद्यन्ते, मेरे चरण पकड़ते हैं। समात्मा सदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। तो बाकी दूसरे तो लोग कैसे हैं भाई, ऐसे महात्मा मुश्किल है, तो इसका मतलब लोग तो दुनिया में बहुत है ना, तो ऐसे महात्मा तो बहुत कम है, तो फिर दूसरे कैसे हैं? तो बोल भगवान कहते हैं दूसरे कामेश ते शर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो दूसरे देवताओं के चरण पकड़ते हैं, क्यों? इसलिए कि वो कुछ भोग की इच्छा करते हैं। इसलिए बहुत किसी और देवताओं की, एक नहीं देवताओं के चरण पकड़ते हैं। महात्मा मेरा चरण पकड़ता है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बहुत कम है, लेकिन बहुत से लाख ज्यादा कहां जाते हैं? अर्जुन पूछता है, तो ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है, तो दुनिया में तो दुनिया भरी हुई है, बाकी कौन है? तो भगवान कहते कामेश ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन अन्य देवता, दूसरे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनका सच्चा ज्ञान उनका गुम हो जाता है कि भगवान के चरणों में जाना चाहिए, वो किसी अन्य देवता के शरण में जाते हैं। तम तम नियमम आस्थाया प्रकृतिम नेता सोया, फिर उनका स्वभाव के अनुसार उस देवता के नियमों का पालन करते हैं, वो नियम से करते हैं पूजा, उस देवता के नियम की पालन करते हैं। फिर क्या होता है, उसको श्रद्धा कौन देता है? उस देवता के ऊपर कौन श्रद्धा देता है उसको? भगवान कहते हैं श्रद्धा मैं देता हूं। यो यम तनुम भक्त श्रद्धया रिक्तम इच्छति तस्य श्रद्धायाम तस्य तथयाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जिस भी देवता की पूजा करना चाहता है, क्योंकि वो कुछ इच्छा पूरी करना चाहता है। वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मंदिर में जितने लोग जाते हैं उनसे आप पूछो क्यों जाते हैं मंदिर में, कभी आप पूछना, आप भी तो मंदिर जाते हैं ना, आपसे ही मैं पूछता हूं क्यों जाते हैं मंदिर में आप? हाँ बोलो माता जी, कैसे क्यों जाते हैं मंदिर में, बोलिए मंदिर में हम क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए, पूजा में क्या बोलते हैं? हाँ, सुख शांति मांगते और, हाँ हाँ बहुत अच्छा, भगवान का दर्शन करते हैं और मंदिर में क्या करने जाते हैं? सब लोगों से ईमानदारी से पूछो। हाँ भगवान, हमारा मन की इच्छा पूरी करना, पहली मन की इच्छा पूरी करना, और भगवान पूछे मन की इच्छा क्या है तो आप क्या कहोगे? तो इतना बड़ा लिस्ट निकालो, मेरी मन की इच्छा है घर मेरा जल्दी बन जाए, गाड़ी मेरी आ जाए, बेटा मेरा डॉक्टर बन इंजीनियर बन जाए, मन की इच्छा ये है और क्या है? हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, यही मन की इच्छा है ना, ये श्लोक वही कह रहा है। ये किसी की ये मन की इच्छा है कि मुझे ये भगवान मिल जाए, यशोदा की तरह मैं बैठ के कन्हैया को माखन खिलाऊं, ऐसी मन की इच्छा है किसी की? यशोदा जाने, कन्हैया जाने, माखन जाने, मेरा घर बनना चाहिए। कन्हैया अपने घर में खुश रहे। सच है कि झूठ है? मुझे भगवान मिल जाए, मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं, मुझे संसार भूल जाए, ऐसी कोई प्रार्थना करता है? तो यहां भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं मुझे तो चाहते नहीं है, चाहते हैं दुनिया को। तो दुनिया को चाहते हैं तो जो दुनिया को चलाने के लिए मैंने जिसको काम दिया उसके पास जाते हैं। अब समझ रहे, मुझे चाहेंगे तो मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरी दुनिया को चाहते हैं। प्रभु को भजे न कोई, भगवान को कोई भजन नहीं कर, प्रभुता को भजे सब। भगवान की जो ये दुनिया है इसका सब पुजारी है, भगवान कोई पुजारी नहीं, भगवान की दुनिया का पुजारी है। भगवान मुझे नहीं, आपको दुनिया चाहिए, भौतिक सुख संपत्ति चाहिए, तो जो भौतिक सुख संपत्ति के देवता है उनके पास आप जाओगे वैसे भी, लेकिन वहां जाने के लिए भी आपको श्रद्धा चाहिए ना उसके ऊपर। वो श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं देता हूं, तुम्हारी उस श्रद्धा को मैं पक्का करता हूं। क्यों भैया भगवान ऐसे आप मेरी श्रद्धा को उसके ऊपर क्यों पक्का करोगे? कम से कम तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हारा धर्म के ऊपर विश्वास तो होगा, तो आगे चल के वो देवता ही तुम्हारा मार्गदर्शन करके मेरे पास भेज दे। ऐसे बहुत से लोग भगवान शंकर के मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं और भगवान शंकर देखता है कि इनको दुनिया नहीं चाहिए, भगवान को मांगने आए हैं, तो भगवान श्री भोलेनाथ उंगली पकड़ के उनको भगवान की राम की भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे लाखों महात्मा हमने देखे हैं जो भगवान शंकर के मार्गदर्शन में भगवान के परम भक्त बने। तो यहां भगवान कहते हैं उसको श्रद्धा मैं देता हूं, और फिर आगे लिखते हैं सत्वया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईयते। ईयते का मतलब इस दुनिया में, ईय का मतलब इस दुनिया में, इस दुनिया में वो उस श्रद्धा के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। आराधना का मतलब उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। लभते च तत कामान, और जब भगवान कहते हैं वो देवता की प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है, उनकी इच्छा पूरी होती है। और कौन करता है इच्छा पूरी? अर्जुन ने पूछा उनकी इच्छा कौन पूरी करता है? भगवान कहता है मय्येव व्यतानितान, मैं ही पूरी करता हूं, इच्छा भी मैं पूरी करता हूं, श्रद्धा भी मैं देता हूं, लेकिन उनको पता नहीं लगता है कि ये मैं करने वाला हूं, वो समझता है कि ये देवता ही सब कुछ करता है। देवता की पूजा करने वाले को श्रद्धा कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं श्रद्धा देता हूं, और जो देवता उसको फल देता है वो कौन देता है? श्री कृष्ण कहते हैं मैं देता हूं। तो फिर आपकी पूजा करना और देवता की पूजा करने में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? जब श्रद्धा भी आप देते हो, फल भी आप देते हो, तो फिर आपकी पूजा और देवता की पूजा में अंतर क्या है? तब भगवान कहते हैं अंतवंतु फलम तेषां, देवता का दिया हुआ फल समाप्त हो जाएगा, अंतवंत उसका अंत हो जाएगा, उसका फल सदा के लिए नहीं रह सकता। क्यों? देवता ही सदा के लिए नहीं रहेगा तो फल कैसे सदा के लिए रहेगा? अंतवंत अंतवंत तु फलम तेषां तद्भवती अल्पमेधसाम। अल्प मतलब थोड़ा, मेधसाम मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि कम है, कम बुद्धि वाले लोग, लेस इंटेलिजेंट पीपल, दे गो फॉर शॉर्ट टर्म टर्म बेनिफिट, थोड़ी देर के लिए कुछ सुख चाहिए। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जो आदमी शराब पीता है वो क्या काय के लिए पीता है? पैसा घर का खर्च कर मैं सुखी हो जाऊंगा इसलिए पीता है ना, बड़ा मजा आएगा। क्या शराब में मजा आता है क्या? हाँ, पागल होता है ना, कम बुद्धि होता है ना, पागल उससे अच्छा है, शराबी से पागल अच्छा है। ये पागल खाना था, एक पागल खाना, पागल खाना यहां है हा? मेंटल हॉस्पिटल, उसके आगे एक शराबी की गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में क्या हुआ, व्हील पंचर हो गया, फ्लैट हो गया। शराबी था, व्हील खोल रहा था, पास में गटर था, सारे बुल्ट गटर में चले गए जो नाली पानी की जा रही थी। ये पीछे से पेके, ये पीछे से रिविया कोई जा रही थी, उसमें गिर गए सारे, बह गए। अब नया टायर लाया, लगाने लगा, एक भी बुल्ट नहीं। बोलता म्यूनिसिपालिटी खराब है, यहां मेरे बुल्ट गाड़ी नाली में चले गए, यहां क्यों नाली बनाई है? अरे नाली पहले से थी, तुमने गाड़ी यहां क्यों खड़ी की है? तब एक पागल ऊपर से देख रहा था, पागल उतर के नीचे आया, बोला तेरे बुलेट तो चले गए, अभी तो तुम्हारे को ऐसे करो, चार चार हर टायर में लगे हुए हैं ना, एक एक निकाल, सबसे निकालो तो तीन बच जाएंगे, तीन इसमें लगाओ, तेरी गाड़ी घर पहुंच जाएगी कल देखो। अरे तू पागल को इतना तुम्हारे को पता लगता है? पागल कहता है मैं पागल हूं, शराबी थोड़ी हूं, सिर्फ पागल हूं मैं, शराबी थोड़ी हूं, शराबी की तो इतनी बुद्धि नहीं है। तो इसको बोलते हैं अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम मतलब कम बुद्धि वाले लोग, थोड़े सुख के लिए। कितना सुख? बोले जब तक जिएंगे तब सुख होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा ना। जैसे मैं यही, आपने क्या सुख मांगा था? घर गाड़ी, यही मांगा ना मंदिर में जाके। तो हमारे जाने के बाद हमारे किसी काम के हैं क्या? इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे तो फिर किसी काम के हैं क्या? हमारे जाने के बाद इस दुनिया में घर रहे, दुकान रहे, न रहे, क्या फर्क पड़ेगा? ये सत्य है कि झूठ है? हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो फिर किसी काम क्या है सब कुछ? भगवान कहते अंतवंता तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यदो यान्ति। देवान देव यतो यजो यान्ति, जो देवता की पूजा करता है देवता के पास जाता है। मद भक्ताम यान्ति मामपि, मेरे भक्त वापस मेरे पास आते हैं। अर्जुन पूछता है पूजा देवता की करने गए, श्रद्धा आपने दी, फल भी आपने दिया, फिर वो देवता के पास जाएगा और आपका भक्त आपके पास आएगा, ऐसे कैसे? यहां से एयर मॉरिशस में आप टिकट लो दिल्ली का, एक आदमी इंग्लैंड का ले, पैसा कहां जाएगा? जो आप पैसा दोगे वो पैसा कहां जाएगा? पैसा तो एयर मॉरिशस के पास जाएगा, और आप कहां जाओगे? इंग्लैंड नहीं, जहां पैसा जाएगा आप वहां तो नहीं जाओगे ना, पैसा जाएगा एयर मॉरिशस के पास और आप जाओगे इंग्लैंड, और पैसा पूरा, और फिर पैसा कहां? वो पैसा गया, आप इंग्लैंड पहुंच गए। तो पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास, लेकिन आप इंग्लैंड जाओगे, आप गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे। यही भगवान कह रहे हैं, पूजा देवता की करोगे तो देवता के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो हमको कहां जाना है पहले ये तो निर्णय कर ले, हमको कहां जाना है? मानो एक आदमी ये मॉरिशस का पायलट बन जाए, तो फिर उसको टिकट तो लेना नहीं है, जहां चाहे वहां जा सकता है ना। हाँ, उसको बिल्कुल टिकट की जरूरत तो नहीं है ना। तो इस जो उधर जाएगा वो ठीक है या टिकट देके इंग्लैंड जाएगा फिर वापस आएगा फिर दोबारा टिकट देके फिर जाएगा वो ठीक है? दोनों में से क्या ठीक है? तो यहां ये श्लोक खुला पड़ा था भगवद गीता में, ये बुद्धिमानी होनी चाहिए, देवता का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान का अपॉइंटेड इस भौतिक जगत के काम को संभालने के लिए एक अधिकारी है, ये समझना चाहिए। हमारे में क्या बुद्धि कम क्यों है? हम देवता और भगवान को समान समझते हैं कि देवता और भगवान एक है, एक नहीं है। देवता भी हमारी तरह जीव आत्मा है, लेकिन उसने भगवान की इतनी सेवा की है कि भगवान ने उसको देवता बनाया है। देवता भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनकी कामना है, क्या कामना है? जैसे हमारे बहुत भक्त होते हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन किसी की कामना होती है मैं टेंपल प्रेसिडेंट बनूं, किसी की कामना होती है कि मैं टेंपल का ट्रेजरर बनूं, हाँ मैं पैसे को देखता रहूं, किसी की इच्छा होती है ना मैं पुजारी बनूं। तो है तो भी दूसरे भी भक्त है, वो भी भक्त है, लेकिन उनकी इच्छा कोई पद लेने की है और कुछ, तो भगवान देवताओं को ऐसे पद दे देते हैं कि ये मेरी सेवा करो, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो जीव आत्मा है। कोई भी इंद्र बन सकता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को सत्यकृतु बोलते हैं, सत मतलब 100, कृतु मतलब यज्ञ, और वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है, उसको दूसरे जन्म में इंद्र होना, इंद्र बनना, इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा। जैसे यहां कोई आदमी एमबीए करेगा तो किसी फैक्ट्री का और किसी कंपनी में उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट मिलेगा, तो ऐसे कोई 100 यज्ञ करेगा उसको इंद्र का पोस्ट मिलेगा, उसके लिए वो क्वालिफिकेशन। जैसे किसी डॉक्टर, किसी को मेडिकल अस्पताल में जाना है तो डॉक्टरी करनी पड़ेगी तो डॉक्टर बनेगा, तो कोई आदमी 100 यज्ञ करेगा तो इंद्र बनेगा। तो देवता और भगवान में अंतर है, पहली बात तो ये समझनी चाहिए। देवता अनेक है, भगवान एक है। देवता जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है, दोनों में अंतर है। अब आइए थोड़ा सा इस श्लोक के साथ आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण 11 साल 4 महीने तक वृंदावन में रहे और लास्ट पार्ट उनका जो था नंदगांव में रह रहे थे। नंदगांव देखा किसने? कोई गया नंदगांव? नंद बाबा का गांव, एक पहाड़ है उसको कहते हैं नंदीश्वर। नंदीश्वर का मतलब नंदी, भगवान शंकर का जो वाहन है उसको नंदी बोलते हैं। नंदीश्वर मतलब जो नंदी का ईश्वर है, मतलब भगवान शंकर उस पर्वत के रूप में वहां विराजमान है। उस पर्वत के ऊपर एक पैलेस है, उसको बोलते हैं नंद बाबा का महल, उसमें मंदिर है और उस अंदर मंदिर के अंदर नंद यशोदा और कृष्ण बलराम, ये ठाकुर जी विराजमान है। मंदिर के बाहर निकलते ही आशुतोष भगवान शंकर का मंदिर है उसी प्रांगण में, उसको नंद गांव कहते हैं, नंद बाबा का गांव। और वहां से नीचे एक जगह है जिसको आशुतोष वन कहते हैं, जहां भगवान शंकर बैठ के तपस्या किया था जब छोटे थे। कृष्ण अभी बहुत छोटे ही थे तो भगवान शंकर उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो शंकर जी कैसे वेश में आए थे? शमशान से आए, बबूत लगी हुई थी, गले में सांप थे, हाथ में डमरू थी, त्रिशूल था और दरवाजे के ऊपर नंद बाबा के बम महादेव खोलाए, माँ यशोदा बाहर आई, देखा बाबा रोटी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए। बोला नहीं, आपके लाला का, आपके बेटे का दर्शन करना है। माँ ने बोला मेरा बेटा डर जाएगा, ये सांप है, बड़े बड़े बाल है। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा बंद कर दिया माँ ने। शंकर जी वहां से उतर के सीधे आशुतोष वन, बाद में नाम हो गया, उस वन में जाके तपस्या करने लगे। और कृष्ण रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, तो गोपियां चुप कराने लगी, एक आई दूसरी आई, नहीं बंद ना कर, रोना बंद नहीं करे। बस एक बूढ़ी गोपी आई, पूर्णमासी आई, ये यशोदा कोई घर में आया था क्या, इसको नजर लग गई है, कौन आया था घर में, बच्चे को नजर लग गई है, इविल आई। यशोदा बोलती है उपनंद आया था, सुनंद आया था, ये तो सब ताऊ इसके आए थे, चाचा आए थे। हाँ एक योगी आया था। हाँ योगी कहाँ है, उसको ढूंढो। अब तो सब गोपियों ने, गोपियों ने कहा वो योगी को ढूंढो, योगी को ढूंढो। तो आशुतोष वन में जाके देखते हैं तो शंकर जी ध्यान में बैठा है। बोले बाबा बाबा चलो, यशोदा मैया बुलाए, बाबा चलो नंद भवन में, यशोदा मैया बुलाती है, उसके लाला को, उसके बेटे को नजर लगी है और आपसे राय लून कराएगी। नजर लगती तो क्या करते हैं, यहां थोड़ा सा नमक और राई लेके आग में ऐसे करके उसे ऊपर से फेंकते हैं। बोले चलो बाबा। शंकर जी को वहां से लाया गया, दरवाजा खोला, शंकर जी अंदर आए, कृष्ण रोना बंद कर दिया, कृष्ण रोना बंद कर दिया। तो मां बोल दिया हाँ अभी जाओ बाबा, बाबा अभी जाओ। शंकर जी दरवाजे की तरफ जाए, कृष्ण फिर रोना शुरू कर दे। अब तो बहुत बड़ा परेशानी होगी, बाबा आए अंदर तो कृष्ण रोना बंद कर दे, बाबा जाए तो कृष्ण रोना शुरू कर दे, क्या करना चाहिए मां। बोला इसका रोना बंद करना है तो इसका चरण लाओ और मैं इसका चरण मेरे सर के ऊपर रखूंगा। शंकर जी ने कहा यशोदा बोला नहीं बाबा, मैं सांप है, मेरा बच्चा डर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सब गोपियां बोलती हाँ 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 हाँ। अब तो बड़ा कॉम्पिटिशन हुआ है। माँ यशोदा ने आंखें बंद कर ली, छोटे लाला का चरण लेके शंकर जी के सर को लगाया, बच्चा रोना बंद किया, हंसने लगा, बड़ा खुश हो गया। तब सब गोपियां कहती हैं रह रहे बाबा नंद भवन में, यहीं रह जाओ, जाओ मत, जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन दे, जब बच्चा रोए तब दर्शन देना। तुम जाते हो तो रोता है, तुम आते हो तो रोना बंद करते, तो यही रहो, जब रोएगा तो तुम आ जाना दर्शन देने के लिए। तो शंकर जी ने कहा दो शर्त के ऊपर रहूंगा, यहां टू कंडीशन है। बोला पहला कंडीशन ये है कि रोज जब इसको स्नान कराते हो ना तो चरणामृत मेरे ऊपर चढ़ाना, इसका चरणामृत रोज मेरे ऊपर चढ़ाना, और इसको जब खिलाती हो ना भोग लगता है वो प्रसाद मेरे को देना, इसका चरणामृत और प्रसाद दोगे तो मैं यहां रहूंगा। बोला हाँ बाबा ऐसे करेंगे। अभी भी नंदगांव में सुबह भगवान का अभिषेक होता है, पहले पहले चरणामृत शंकर जी के ऊपर चढ़ता है और भोग लगता है तो प्रसाद पहले शंकर जी को अर्पण होता है वहां से आकर। अभी बाबा वहां रुके हुए, तो 11 साल 4 महीने जब पूरे हो गए भगवान श्री कृष्ण के ब्रजलीला के, तो एक दिन नारद ऋषि कंस के पास आया मथुरा में। कंस ने कहा ये देव ऋषि क्या समाचार है, सब ठीक है, कुशल मंगल है। बोला सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको जो आठवां देवकी का बेटा मारने वाला था आपको मालूम है कहां है। कंस बोलता क्या, देवकी का आठवां बेटा जो आकाशवाणी हुई थी आपको मालूम है कहां है। मैं बताता हूं, नारद कहता है मैं बताता हूं, वो नंद बाबा के घर जो कृष्ण बलराम है ना, वो वसुदेव के बेटे हैं, आपको कुछ पता नहीं लगा, वो वहां रह रहे हैं। ये तुम्हारे जो राक्षस गए थे ना बच्चों को मारने, पूतना चरणावत, सबको उन्होंने मारा है। ऐसा काम क्यों नारद कर रहा है, कंस को जाके समाचार दे रहा है। नारद कहते हैं भगवान आए थे असुरों को मारने के लिए और ये मक्खन उधर खाए खाए मक्खन जा रहे हैं, ये कंस कब मरेगा तब सबका सुख होगा, अब इसको जल्दी मारना चाहिए ना। नारद का काम है भगवान का भक्तों के लिए सुख करने के लिए कंस का बहुत जल्दी मरना जरूरी। अब कंस ने कहा ठीक है क्या करना चाहिए। कंस ने कहा एक तो देवता भैरव की पूजा करेंगे, शंकर का एक रूप है भैरव, काल भैरव कहते हैं, उसको पशु की बलि चढ़ाते हैं। तांत्रिक लोग प्रायः भैरव की जाके पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं, बहुत जगहों पे भैरव के मंदिर है। प्रभुपाद ने लिखा है जहां वैजनाथ है बिहार में एक ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का, उसके पास काल भैरव का बार कार काल भैरव का मंदिर है, लोग जब पशु की बलि चढ़ाते हैं। काल भैरव का बलि चढ़ाएंगे, धनुष यज्ञ करेंगे देवता की पूजा के लिए। मैं यही कहने वाला था कि असुर लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े काल भैरव के पुजारी होते हैं। दुर्गा काल भैरव को बलि चढ़ाना ये प्रायः असुर सारे देवताओं के पुजारी, ये असुरी पूजा है, असुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा काम करते हैं। और कंस ने ये आयोजन किया और फिर बुलाया हरे कृष्णा, फिर बुलाया चाणूर और मुष्टिक खल और तोशल को जो बहुत बड़े रेसलर थे, बोला तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं कृष्ण बलराम को यहां बुलाऊंगा और उनके साथ आप रेसल मैच में उनको मार देना। फिर बुलाया हाथियों को संभालने वाले का, हाथियों को जो संभालता उसको बुलाया, हमारे पास सबसे जो बड़ा शक्तिशाली हाथी है कोवलिया पीड़, उसको तैयार करके गेट के ऊपर खड़ा रखना रंगमंच के, और कृष्ण बलराम अंदर पहुंच न पाए। सारी व्यवस्था करके कंस ने कहा एक बहुत बड़ा मैच रखते हैं यहाँ, रेसलिंग का मैच रखते हैं और सब जगहों से लोगों को बुलाते हैं और कृष्ण बलराम को उसमें बुलाएंगे और मरवा देंगे। अब कंस ने अक्रूर चाचा के पास आदमी भेजा। अक्रूर कौन है? अक्रूर यदुवंशी है, वृष्णिवंशी है, और सारे वृष्णिवंशी कंस के भय से अलग जगहों पे चले गए थे, लेकिन अक्रूर यहां रह गया था, उसको विश्वास था एक ना एक दिन कृष्ण का दर्शन होगा। और अक्रूर को कंस ने बुला के कहा अक्रूर आप मेरे बहुत मित्र हैं, मुझे आज आप में काम पड़ा, आप एक मेरे ऊपर एक एक मेरा काम कीजिए। बोली लो कृष्ण बलराम जो नंद बाबा के वहां रह रहे हैं ना उसके बेटे, इसको नहीं बताता है वसुदेव के बेटे। नारद के सामने पहले तो तलवार निकाले, कंस बोलते अभी वसुदेव को मार देता हूं, मेरे को बताया नहीं ऐसे लड़के को छोड़ के आ गया उधर। नारद बोलता ठहरो तुम्हें बस वसुदेव से डर तो नहीं है ना, तू उसके लड़कियां का सोच वसुदेव के लड़कियों सोच रहा। फिर भी वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागर में डाल दिया दोबारा पकड़। और कहने लगा पहले इन दोनों को लाओ, कृष्ण बलराम को मारने के बाद वसुदेव और देवकी को मार दूंगा, फिर नंद बाबा को भी मार दूंगा, फिर मेरे बाप उग्रसेन को भी मार दूंगा और देवकी के पिता देवक को भी मार दूंगा, फिर जरासंध मेरा सुसर है और नरकासुर बाणासुर द्रिवड़ ये मेरा साथी है, फिर सारे राजाओं को जो देवताओं के पक्ष में मार के खत्म कर दूंगा, भगवान के जो भक्त हैं उसको नहीं रहने दूंगा, फिर मेरा राज अच्छा हो जाएगा। अब कहते अक्रूर एक काम करो, कृष्ण बलराम जो नंद बाबा के बच्चे हैं उनको यहां ले आओ, कैसे भी यहां लाओ, मैं उनको यहां किसी तरीके से मरा हुआ देखना चाहता हूं। अक्रूर ने कहा वैसे भगवान की जो इच्छा होती है वो होती है, आदमी सोचता है लेकिन होता क्या है कुछ मालूम नहीं, लेकिन आप राजा है मुझे कह रहे हैं तो मैं लेने जाऊंगा, वो नया रथ तैयार किया है अक्रूर आप ले जाइए। अक्रूर कहता है बाकी भगवान को लाने के लिए नया रथ होना चाहिए, कंस जिसमें पहले चढ़ाया उसमें थोड़ी भगवान चढ़ के आएगा, न्यू रथ अब नया रथ है। अक्रूर को ये कहकर कंस ये अक्रूर को कंस ने आदेश दिया कल जाना, कल आप जाना वृंदावन और वहां से कृष्ण बलराम को लेके। अब नारद जी वहां से निकले और गए सीधे, गाय चरा रहे थे कृष्ण बलराम आदि ग्वालों के साथ वृंदावन में। अकेले कृष्ण को जब देखा तो नारद ने प्रणाम करके कहा, आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सब ठीक है, लेकिन कल मैं चाहता हूं कि आप मथुरा चलें, कंस को, चाणूर को, मुष्टिक को, खल, तोषल, इन सबको कल मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। मैं कंस को बोल के आया हूं, अब आपको नारद उधर कंस को बोल के आया, इधर कृष्ण को बोलते हैं कि आप उधर चलो, आपको अब उधर चलना है, उसके बाद इन सबको मारने के बाद जरासंध को मारना है, फिर आपको द्वारका में विवाह करने हैं, आपको बहुत काम करना है, अर्जुन का रथ चलाना है, भगवद गीता बतानी है, अब आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए तैयार हो जाए। नारद श्री कृष्ण को यह समाचार देखेंगे। इस बीच में उसी दिन जब नारद आया उससे पहले कंस ने दो असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। पहले भेजा केशी को जो घोड़े के रूप में आया और भगवान ने टांग से पकड़ के उसको घुमा के दूर फेंका, और फिर जब उठा वहां से तब आया मुंह खोला हुआ घोड़ा, भगवान ने लेफ्ट हैंड पूरे का पूरा उसके मुंह में डाल दिया और जैसे तपता हुआ लोहा हो ऐसे उसका गला जलने लगा, सांस बंद हो गया, आंखें बाहर निकली और केशी मर गया। केशी घोड़े के रूप में आया था और अभी ये सुबह सुबह का टाइम था, अभी दोपहर से पहले बच्चे खेल रहे थे, कृष्ण बलराम खेल कर रहे, चोर और सिपाही का खेल कर रहे थे, और कुछ भेड़ें बनी थी, कुछ भक्त भेड़ बन गई थी, कुछ चोर ले जाते थे, सिपाही पकड़ते थे। एक असुर व्यमासुर नाम का आया, सब भक्तों को ले जाकर भेड़ जो बने थे उनको उठा के ले जाके एक गुफा में बंद कर दिया, केव में, और पत्थर दे दिया ऊपर। कृष्ण पहचान गया ये असुर आया है, उसको पकड़ के कृष्ण ने दे मारा मुक्का, उसको मार के वेमासुर की केव से, अभी भी एक स्थान है कामे वन में, उसको बोलते हैं वेमासुर का गुफा, जिसमें ग्वाल वालों को उसने छुपाया था। तो भगवान अब जाने वाले हैं कहां से, मथुरा वृंदावन से, तो भगवान ने तीन असुरों को अंत में मारे हैं जाने से पहले। क्यों मारे हैं, कौन कौन से थे, क्यों मारे, बोला मेरे जाने के बाद मेरे भक्त इनको कोई गलत रास्ते पे न लगा दे, धर्म के नाम में गलत रास्ते में लगा दे, इसके लिए भगवान ने मारा। अरष्टासुर बैल के रूप में आया था, हाँ एक बैल, बैल धर्म की निशानी है, कभी लोग धर्म के नाम में जब अधर्म करते हैं तो असुर हो जाते हैं, काम धर्म का दिखाते हैं करते अधर्म है। तो भगवान ने पहले के धर्म के नाम में कोई ब्रजवासियों को मेरी भक्ति से विचलित न कर दे, इसलिए पहले मारा अरष्टासुर को। फिर कोई वेद के नाम में, तुम वेदों में लिखा है कि यज्ञ करेंगे बलि देंगे और भगवान की प्रेम भक्ति बंद न करा दे, इसलिए भगवान ने घोड़े केशी को मारा। घोड़ा हन हनाता है ना, इसने पहले भी वेदों की चोरी की थी, हयग्रीव नाम का ये असुर था, तो ये वेदों का प्रतीक, वेदों के नाम में कोई धोखा न दे भक्तों को। कई भक्त होते हैं कहते हैं कि हाँ आप हरे कृष्णा बोलते हो, आपको चल के जो यज्ञ करना चाहिए वेद में ऐसे लिखा है, भगवत गीता है, भगवान ने लिखा है पुष्पतिम वाचम प्रवदन्ते, ये वेदों की पुष्पति वाचे निष्गुण निस्तुर गुण भव अर्जुन, ये वेद तीन गुणों से बात करते हैं, तुम इनसे ऊपर उठाओ, उठ के आ जाओ। वेद वेद के अंदर तीन गुणों की बातें हैं और तीन गुणों से ऊपर उठेंगे तभी भगवान को जान पाएंगे, बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो तीसरा व्योमासुर ये योग, योगी क्या करते हैं, छुपा देते हैं ना आंखें बंद करके, ये कहिए आंखें बंद करके खड़ा है ग्वाल बाल बन के और सबको ले जाके छुपा देता है। तो कोई लोग योगी ना आए कि हम आपको योगा सिखाते हैं और भगवान की भक्ति न बिगाड़ दे। तो ब्रजवासियों को योग के साधन के द्वारा भक्ति से विचलित न करे, इसलिए व्यामासुर को मारा। वेद के नाम से इनकी भक्ति को कोई विचलित न करे, इसके लिए केसी को मारा। धर्म के नाम में कोई इनकी भक्ति को खराब न करे, इसलिए अरष्टासुर को मारा। इसका मतलब भक्तों को भी ये तीन खतरा सदा रहता है। कोई योग के नाम में, बहुत से लोग कोई योग 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 करेगा तो वो भक्ति वा भक्त भक्ति छोड़ के योग में चला जाता है, उसकी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। अब भगवान जाने की तैयारी करते हैं। अक्रूर काका सुवरथ के ऊपर चढ़ा, मनोरथ करता है, मैं आज कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, कितना मैं भाग्यशाली।
रथ को आंसते आंसते ले जा रहा है। जगह रास्ते में जाते हुए कृष्ण बलराम के चरणों के चिन्ह देके धरती के ऊपर रथ को छोड़कर उसके ऊपर लेटने लगा। अरे भगवान की ब्रज रज है, भगवान के चरणों के यहाँ निशान पड़े हैं। आनंद लेता हुआ ये संकल्प करता आ रहा है, मन में कामना कर रहा है, मैं जब जाऊंगा मेरा हाथ पकड़ के कृष्ण बोलेगा काका आओ, मेरा काका आओ, कितना मुझे अच्छा लगेगा। मैं आज उन बच्चों का दर्शन करूंगा जिसके लिए मैं आज 11 साल से इंतजार कर रहा हूं। ये पूरा अध्याय अक्रूर का मनोरथ है। नवदा भक्ति में अक्रूर किसका उदाहरण है? वंदना भक्ति का, वंदनम का उदाहरण है अक्रूर। भगवान की जो वंदना की है अक्रूर ने, वो भक्ति का नवदा भक्ति में वंदना का एग्जाम्पल है अक्रूर। अक्रूर नंद गांव में शाम को पहुंचा, रथ को देख के गोपियां आश्चर्यचकित हुई। नंद बाबा के पास गया, उसका स्वागत हुआ, अतिथि के रूप में जलपान हुआ, बात हुई तो कहा बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, एक बहुत बड़ा उत्सव है मथुरा में, आप सब लोग ग्वाल बाल भी चलिए, नंद बाबा आप भी चलिए और कृष्ण बलराम को भी ले चलिए, और ये कंस के वहां से मैं आप इनको लेने आया। रात को तो ये सो गए, सुबह न यशोदा की आंखों से आंसू बंद हो न गोपियां, कृष्ण को ले जा रहा है, इसका नाम किसने कहा? ये अक्रूर, ये तो बड़ा क्रूर है। क्रूर का मतलब है जो बहुत क्रूअल है, कि हमारे प्राणनाथ हमारे श्री कृष्ण को ले जा रहा है। माँ यशोदा तो जैसे मूर्छित हो गई, नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ मथुरा के लिए रवाना हुए और गोपों को लेकर उसी उत्सव में जाने के लिए। एक रास्ता है नंद गांव से, एक रास्ता जाता है उसको कहते हैं अक्रूर गमन मार्ग। जिस रास्ते से अक्रूर नंद गांव से मथुरा गया था उस रास्ते का नाम है अक्रूर गमन मार्ग। कभी जाओ तो नंद गांव से उस रास्ते से जाएंगे तो वो सब जगहें आएंगी जहां जहां से कृष्ण बलराम को अक्रूर ले गया है। वो सब लोग उस रास्ते से नहीं जाते, लेकिन वो रास्ता अलग है, उसका नाम है अक्रूर गमन मार्ग। तो गोपियां आके रथ के सामने लेट गई कि हमारे ऊपर से रथ लेके जाओ, हमको तो मार के ले जा रहे हो कृष्ण को। कृष्ण ने कहा मैं परसों वापस आ जाऊंगा। तो जिस गांव के पास बोला परसों वापस आ जाऊंगा उसका नाम हो गया परसुआ। ये गांव में 13 दिन लग जाएंगे आने में, 13वां उस गांव का नाम है। तो जहां जहां से कृष्ण गया उन गांव में सबको कहा अभी आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा, अभी जाता हूं मथुरा। बहुत दुखी हो गई गोपियां, ये तो बहुत बड़े उनके विरलाप हैं। कृष्ण बलराम सोच रहे हैं कि काका अक्रूर बहुत डर रहा है। क्यों अक्रूर डर रहा है? अक्रूर कह रहा है मैं कहां इस दो सुंदर बालकों को उस कंस क्रूर के पास ले जा रहा हूं जो इनको मारना चाहता है, कसाई के पास जो बकरे को ले जाता है, ऐसे मैं क्या इसको उस कसाई कंस के हाथ में देने जा रहा हूं। कृष्ण समझ गया कि काका अक्रूर डर रहा है, इसलिए जब जमुना का किनारा आया तो कहा बाबा काका रथ को यहां रोकिए, जमुना में स्नान करेंगे। वो जगह जहां रथ को रोका था उसको अक्रूर घाट कहते हैं। अभी भी कभी वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन से 2-3 किलोमीटर आगे एक मंदिर है, उसको पागल बाबा मंदिर कहते हैं, उसके सामने रास्ता जाता है 1 किलोमीटर अंदर, अक्रूर घाट है। अक्रूर घाट के ऊपर जब काका अक्रूर जमुना में स्नान कर रहा था तो देखता है अरे अंदर तो एक विष्णु शंख चक्र गदा लिया हुआ है और एक अनंत शेष, बाहर देखता है रथ के ऊपर कृष्ण बलराम बैठे, अंदर देखता है साक्षात विष्णु का दर्शन हो रहा है। अक्रूर कहता है ये क्या है, वो उधर बैठे हैं ये बैठे हैं, दोनों ये है क्या? तब अक्रूर को विश्वास हुआ कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात वो शेष है बलराम जी, अनंत है शेष है और ये विष्णु है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य कहते हैं अक्रूर घाट के स्नान के समय जो श्री कृष्ण वसुदेव कृष्ण के रूप में कंस की जेल में वसुदेव देवकी के पास प्रकट हुए थे, वो वसुदेव कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा गए, लेकिन जो कृष्ण यशोदा और नंद के
घर में प्रकट हुए थे वो कभी ब्रज को छोड़ के बाहर नहीं जाते, वो वहां रुक गए। इस दर्शन का जो जगह है, कृष्ण कहते हैं मैं कभी भी एक कदम भी ब्रज से बाहर नहीं जाता, तो उस स्नान का स्थान से अंदर ब्रज है वहां कृष्ण रुक गया। और वसुदेव कृष्ण जो असुरों के संहार के लिए आए थे चतुर्भुज रूप धारण करने वाले, वो वहां बलराम जी के साथ मथुरा गए। तो कहा जब मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी कहने लगे आप हमारे घर चलो। कहा हम थोड़ा नगर घूम के आते हैं, जरा मथुरा का दर्शन कर लें, फिर आपके पास आएंगे। अब ग्वाल बाल कृष्ण को मिल गए, वहां पहले पहुंच गए थे नंद बाबा के साथ। बोला कृष्ण चलो शहर घूमने चलते हैं मथुरा का। और घूमने जाते हैं तो पहले उनको दिखाई कौन देता है, एक धोबी। धोबी कौन सा? कंस का धोबी। बहुत अच्छे नए नए कपड़े धुले हुए उठा के, धुले हुए स्त्री किए हुए ले जा रहे। कृष्ण बलराम कहते इधर क्या है, कपड़े हैं? हम पहली बार मथुरा में आए हैं, ये हमारे साथ ग्वाल बाल हैं, कुछ कपड़े नए दे दो, ये हमारे तो धोती कुर्ते तो गैया चराने वाले हैं, नए कपड़े पहनने की इच्छा है। ए, कंस के कपड़े हैं तुम्हारे, को कैसे देंगे? कहां से आ गए ये ग्वाले? कृष्ण ने कुछ नहीं किया, ऐसे देखते हुए दे मारा एक हाथ गले के पास, धोबी का राम नाम सत हो गया, धोबी मर गया। धोबी को भगवान ने उधर खड़े खड़े मार दिया। क्यों मारा, कौन था ये धोबी? गर्ग संहिता लिखती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब रात को छुपे हुए जा रहे थे और धोबी ने अपनी पत्नी को कहा था तू बाहर रह के आई है जा, मैं राम नहीं हूं जो सीता को रख लिया रावण के पास रहने के बाद। उस वक्त तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी एक आदर्श राजा का स्थापित करना था, चरित्र तो सीता का परित्याग किया था, लेकिन आज कृष्ण बोलता है मैं मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, उस दिन कुछ नहीं कहा था, आज तेरा राम नाम सत्य होना है। उस धोबी का उद्धार किया भगवान ने। अब कपड़े देखें तो कंस के इतने बड़े बड़े कपड़े, ग्वाल बाल छोटे 11-12 साल के, अब क्या करना चाहिए? बोला किसी टेलर के पास चलते हैं। टेलर का दुकान देखा, अरे भाई ये कपड़े हमारे अल्टर करके इसकी साइज के करो सबके। टेलर ने कहा ये सब करता हूं, पहले मैं आपके कपड़े ठीक करूंगा। कृष्ण को बोल, और कृष्ण को प्रेम से बैठ के कपड़े सिल रहा है, आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं। कृष्ण बोले जल्दी करो इन सबके बनाने, लेकिन प्रेम से पहना रहा है। तब कौन है ये इतना प्रेम से कृष्ण के कपड़े सिल रहा है, बात क्या है? गर्ग संहिता लिखती है कि जब राम जी का राज तिलक होना था तो उसके युवराज पद के राज तिलक के कपड़े जिस दर्जी ने बनाए थे वो तो पहने नहीं, राम तो वनवास चले गए। तो बेचारा वो दर्जी प्रतीक्षा कर रहा था कब मेरे को मौका मिलेगा कि मैं भगवान को अपने हाथों से कपड़े नाप करके पहनाऊंगा, आज भगवान मेरे पास अपने आप चल के आए हैं, मेरा भाग्य है। तो उसको उसकी जो इच्छा रह गई थी राम अवतार में जो पूरी नहीं हुई थी, आज ये दर्जी बड़े प्रेम से कृष्ण को कपड़े पहना रहे। कृष्ण बलराम ग्वाल बाल कपड़े पहन के बड़े तैयार हो गए। तब सुधामा माली के घर में गए, सुधामा माली के फूलों का बगीचा था, देखा कृष्ण को बलराम को ग्वाल बालों को। सुधामा और सुदामा की पत्नी बड़े आनंद में मगन हो गए, बड़े सुंदर फूलों के मालाएं बनाए। अब तो कृष्ण बलराम को मालाएं फूलों की नए ताजे, सब ग्वाल बालों को। एक कुबड़ी स्त्री को जाते हुए देखा दूर से, अरे सुंदरी बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या है कहां जा रही हो, क्या है आपके पास? वो कहती है ये अंगराग है, चंदन है, मैं भोजराज कंस को लगाने जाती हूं, उसको बहुत पसंद आता है। कृष्ण बलराम कहते हैं ये हमको लगाएंगी? हाँ आपको लगाऊंगी। अपने हाथों से कृष्ण को अंगराग लगाया चंदन, बलराम जी को लगाया। खड़े खड़े कृष्ण को बड़ा आनंद आया कि इसने हमारी सेवा की है। भगवान ने एक पांव उसके दोनों पांव के ऊपर दिया, एक हाथ से चुटिया को पकड़ा और दूसरे हाथ से जहां कुबड़ था ना बाहर टेढ़ा था पीछे उसको दे मारा ऐसे एकदम कुबड़ी सुंदरी हो गई, वो जो कुबजा थी एकदम सुंदरी हो गई, ना अस्पताल में जाना पड़ा ना ऑपरेशन करानी पड़ी, भगवान ने खड़े खड़े एक पांव पांव के ऊपर एक चुटिया में और दे मारा पीछे से ऐसे मुक्का और वो सुंदरी हो गई, ऐसी सुंदरी हो गई। अरे अपने आप को देख रही, अरे मैं तो कितनी कुबुरी थी, लोग मुझे मजाक करते थे, आज मैं बहुत सुंदरी हो गई। तब तो कृष्ण को बोला मेरे घर आओ, अभी नहीं काम पूरा करके फिर आऊंगा। अब श्री कृष्ण बलराम को चंदन भी लगा हुआ है, ग्वाल बाला सब खुश है। अचानक दूर से देखते, अरे ये बड़ा हनुमंच है, ये क्या है? सिपाही खड़े थे, अंदर धनुष रखा है भैरव यज्ञ के लिए। जाते ही कृष्ण धनुष को ऐसे उठाया, सिपाही बोले मत उठाओ, कल के लिए पूजा का है। धनुष के दो टुकड़े हो गए, सिपाही गए आगे, सिपाहियों को मार दिया। ये समाचार पूछा कंस को, कंस कह रहा क्या हुआ? बोला धनुष तोड़ दिया, हमारे सिपाही मार दिए। किसने? कृष्ण बलराम ने। अब तो कंस रात को नींद नहीं आए, कृष्ण बलराम गए बगीचे में, बाबा नंद बाबा रहा हुआ था, ग्वाल बाल रात को वहां सो गए। सुबह कंस बोलता है कोलिया पीर को खड़ा करो, गेट के ऊपर अंदर नहीं आना चाहिए, कृष्ण कल धनुष तोड़ दिया, चारों ओर मुस्टिक तैयार हो जाओ। अब यज्ञ मंडप बहुत बड़ा है, चारों ओर से ऊपर ग्वाल बाल एक तरफ, नंद बाबा बैठे हैं, अलग जगहों से आए हुए लोग बैठे हैं, मथुरावासी बैठे हुए हैं। दरवाजे के ऊपर से कृष्ण बलराम अंदर आ रहे हैं और दोनों के हाथ में टूटा हुआ धनुष था जो कल तोड़ा था, तो हाथी वाला जबरदस्ती उनकी तरफ हाथी ले जाए, हाथी चलाने वाला मावत, अरे भाई इसको हटाओ, हमको जाने दो। बोला ये हटेगा नहीं। तो बलराम बोल रहा ये नहीं हटेगा तो हम इसको हटाते हैं। कृष्ण बोल ठहरो, और उठा के कोलिया फिर हाथी को, पहले तो ऐसे खींचा तो पहले मावत नीचे गिरा, मावत गिरा फिर हाथी को घुमाया, उसके दोनों बड़े दांत थे ना वो निकाले, एक दांत कृष्ण ने हाथ पे कले गंदे के ऊपर रखा, एक बलराम जी के खून लथपथ रह रहा है। कंस ऊपर बैठा था आसन के ऊपर देख रहा है वो खून आ रहे हैं, जिनका वो कृष्ण बलराम आ रहे हैं। बोला उनके कंधे पे क्या है? बोला कोलिया पीठ के दांत है, कोलिया पीठ मर गया। बोला उसके दांत उसको उनके कंधे पे है तो मर गया, तब दांत निकले, नहीं तो दांत नहीं निकले, खून बह रहा है। ही जल्दी करो चाण और मुस्टिक। अब चाण और मुस्टिक पहलवान खड़े हो गए, आइए आइए हमारे साथ कुश्ती कीजिए। कृष्ण बलराम कह रहे हम गांव के, हमें कुश्ती करना आता नहीं है, आप बहुत बड़े चैंपियन हो, हमसे क्या कुश्ती करो। तब तो ऊपर बैठे लोग कहते हैं ये तो अन्याय है, वो छोटे बालक 11 साल के, ये इतने बड़े कुश्ती वाले, उनके साथ कुश्ती कैसे करेंगे, ये तो अधर्म है, ये तो कंस अनीति कर रहा है। चाण और मुस्टिक कहते हैं आप बच्चे हो, पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अगासुर को मारा, केसी को मारा, इतने सब को मारा, आप बच्चे हो, आप हमारे साथ कुश्ती करो। बलराम को कृष्ण कहता है इनका भी उद्धार करना पड़ेगा, चलो चालू करते हैं। चाणूर और मुस्टिक, चाणूर के साथ कृष्ण, मुस्टिक के साथ बलराम जी, लोग बड़े आश्चर्य में देख रहे हैं। ग्वाल बाल और नंद बाबा कहते हैं हमारे लाला से ना, कहां हमारे लाला को मुसीबत में डाल दिया है। ग्वाल बाल कहते हैं मारो कृष्ण, दे मार इसको, उल्टी तरफ ले राय, देखा मैच के अंदर झंडियां उड़ाते हैं, बोले जल्दी करो मारो इसको मारो। मथुरावासी कहते हैं छोटे बालकों से अन्याय कर रहे हैं, कंस बोलते हैं इसको जल्दी मारो नहीं तो मेरे को मारेगा। इतनी देर में इन दोनों को गिराया और बलराम जी ने खल और तोसलाए उनको देखा, और कृष्ण ने बोला हमारा मामा बहुत देर से परेशान हो रहा है। कृष्ण कूद के ऊपर चढ़ गया मंच के ऊपर, मामा को पांव इसे बालों से पकड़ के कंस को खींच के नीचे किया, तलवार निकाली, लोग आए उससे पहले छाती के ऊपर बैठ गए और कंस को 2000 मुक्के मार के अब कंस का भी राम नाम सत्य हो गया। अब मथुरा के अंदर कृष्ण ने कंस को मारा और सीधा उग्रसेन महाराज को जेल से आजाद करके राज तिलक दिया और फिर अपनी माता और पिता वसुदेव और देवकी से मिलने गए। वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को जेल खाने से जन्म लेते ही छोड़ के आए थे मथुरा में, उसके बाद आज 11 साल, 11.5 साल के बाद देख रहे हैं। यशोदा माँ के स्तन में दूध आ गया, आज अपने देवकी माता के हृदय पिघल गया कृष्ण को, सर सूंघने लगे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उग्रसेन राजा हो गया, नंद बाबा ने कहा चलो बेटा वापस चले, अब हो गया सब, यहाँ का मथुरा का मेला खत्म। बाबा अभी कंस को मारा है ना,
इसकी हमारे मामा की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति है ना, ये जरासंध की बेटियां हैं। जरासंध को जब पता लगेगा तो जरूर वो सेना लेकर आएगा, और हम अगर वृंदावन चलेंगे तो ब्रजवासियों को कष्ट सहना पड़ेगा और हमारे पास वहां लड़ने की व्यवस्था नहीं है। तो कुछ समय मुझे मथुरा रहकर यहां की व्यवस्था ठीक करूंगा, फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर बाबा कैसे भी बाबा को मना के रवाना कर दिया, नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर वापस वृंदावन की तरह गए और कृष्ण बलराम अब मथुरा में रह गए। और तब कहा गया, 11.5 साल बढ़ के हो गए, अभी तक तो पढ़ने भी नहीं गए, स्कूल में गए नहीं, 11.5 साल कभी स्कूल तो गए नहीं, अब तो पढ़ाना चाहिए, संस्कार देने चाहिए इनको। तब सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन में 64 दिन 64 डेज के अंदर 64 आर्ट सीख लिया। गुरु दक्षिणा क्या चाहिए गुरु जी? गुरु माता कहती है बेटा, हमारा बेटा, हम गए थे प्रभास में नहाने के लिए, हमारा बेटा समुद्र में गया था, हमको वापस बेटा लाके दो। कृष्ण बलराम गुरु दक्षिणा में अपने गुरु सांदीपनि मुनि के बेटे को ढूंढने के लिए समुद्र में गए। समुद्र में एक शंखचूड राक्षस था, उसको मारा, वहां से 5 जने शंख मिला, उस 5 जने नाम का राक्षस था, तो शंख भगवान ने 5 जने के प्राप्त किया। फिर वहां से गए सुमंत यमराज की पुरी में, यमराज को कहा वो हमारे गुरु का बेटा बुलाए, कर्मों से आया, बोला कर्मों का तुम सारा पन्ना फाड़ दो, बच्चा हमको वापस दो। बच्चे को लाया वापस, अपने गुरु को बच्चा आके दे दिया गुरु दक्षिणा में। गुरु ने कहा अब हमारी विद्या सदा सफल होगी, और आशीर्वाद दिया। वापस कृष्ण बलराम लौट के मथुरा आए, तब तक तो जरासंध सेना लेके आ गया, 17 अक्षों ने मगधराज जरासंध युद्ध करने के लिए आया, और मथुरा वासियों में कृष्ण बलराम ने युद्ध करके सबको मार दिया। बलराम ने जरासंध को पकड़ा, बोला मारता हूं इसको, कृष्ण बोला मत मारो, हमारे मामे का ससुर है, इसको मत मारना। बलराम बोला मामा को मार दिया भाई, मामे के ससुर के ऊपर कौन सी दया करनी है। बोला आंख मनी मैं इसको छोड़ दो। जब छोड़ दिया तो बलराम कहते उसको छोड़ा क्यों, हम कहां ढूंढेंगे बदमाशों को, अपने आप ये कट्ठे करके ले आएगा या तब मारेंगे, ये जाएगा फिर कहीं से कट्ठे करके अपने आप लेके आएगा, जितने सब असुर है अपने आप ये लाएगा तब हम मारेंगे, हम कहां जाके ढूंढेंगे। 17 बार 17 टाइम जरासंध वहां से सेना लेकर आया, हर बार सारी सेना को मार के मामे के ससुर को छोड़ दिया। अब 18वीं बार ब्राह्मणों को बुला के जरासंध कहता है पूजा करो शंकर जी की, इस बार मेरी विजय होनी चाहिए, अगर मैं इस वक्त नहीं कांकर किया तो आप हमारे साथ मंदिर पर मंत्र पढ़ते हुए चलो, पूजा करते हुए चलो, हम विजयी होंगे तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे और इनाम देंगे और पुरस्कार देंगे, और हमारी विजय नहीं होगी तो तुम्हारा सरकार देंगे, ब्राह्मण पूजा ठीक तरह हमारी पूजा करो। और दूसरी तरफ से काल यवन आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, कृष्ण ने कहा एक तरफ काल यवन आ रहा है, एक तरफ जरासंध इस बार 23 अक्षौणी सेना बड़ी लेकर आ रहा है, अब हमारे द्वारकावासियों को बड़ी कष्ट होगा, क्या करना चाहिए, सॉरी मथुरावासियों को कष्ट होगा। तो विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारका में बहुत सुंदर समुद्र के अंदर एक पुरी बनाई, द्वारका पुरी, और योग माया के द्वारा सब मथुरावासियों को द्वारका पहुंचा दिया यदुवंशियों को। फिर आगे कृष्ण भागने लगा और काल यवन पीछे भागा, कालियान के कहां जा रहे हो, खड़े नहीं होते हो, लड़ोगे नहीं, कृष्ण लाओ, फिर आगे भागे। अब कृष्ण उनके हाथ ना आए, ये तो यशोदा के हाथ में आ गया, उसने बांध दिया, कालियवन के हाथ नहीं आए। भागते भागते एक केव देखी, गुफा, कृष्ण उसके अंदर चले गए, अपना कपड़ा सा पीला एक आदमी सोया हुआ था उसके ऊपर डाल दिया, कृष्ण अंदर जाके बैठ गए। कालियवन अंदर आते ही उसको कह रहे यहां आके सो गया, दे मारी उसको लात मारी, उसने आंख खोली, आंख खुलते ही काल यवन मर के भस्म हो गया। कौन सोया हुआ था? मुचकंड महाराज। महाराज मुचकुंड सूर्य वंश का एक राजा था, देवताओं के लिए युद्ध करने गया था, देवताओं के युद्ध करने के बाद जब विजयी हुआ तो देवताओं ने कहा, वो बोलता है मुझे
देवताओं ने कहा क्या आशीर्वाद चाहिए, बोला मैं सो जाऊं, मेरे को आशीर्वादों में थक गया हूं, जो मेरे को उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। देवताओं ने कहा तथास्तु। आज कृष्ण ने कहा इस काल जीवन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे मारने के योग्य नहीं। मुचकुंड ने मारा तब कृष्ण का दर्शन हुआ, मुचकुंड कृष्ण को देखा बड़ा खुश हो गया, आनंद हुआ, और फिर बाहर निकल के देखता है तो आदमी छोटे हो गए हैं, पेड़ छोटे हो गया। अरे मुचकुंड का ये तो कलयुग आ गया। एकदम मुचकुंड वहां से निकल के गंध माधव पर्वत जहां बद्री का आश्रम है वहां चला गया तपस्या करके कृष्ण की भक्ति करने, और वहां से वो भगवत धाम चला गया। और यहां कृष्ण वापस मथुरा में आके देखता है जरासंध की 23 अक्षरों की सेना खड़ी है, ब्राह्मण आगे जप कर रहे, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं ब्राह्मण, कृष्णा है, गोविंदा है, हाँ क्या है, नमो ब्रह्मण देवाय, गोब्रह्म हिताय, जगत हिताय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण बोल रहे ये तो मेरे को प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्राह्मण की गौ की रक्षा करो, इसका मतलब है अगर मैं इस बार जरासंध को हरा दूंगा तो जरासंध इन ब्राह्मणों को मार देगा, और मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आया, क्या करना चाहिए, आज भागते हैं रणभूमि से। अब लड़ाई के मैदान से कृष्ण बलराम भागे, जरासंध कहते कहां भाग रहे हो, खड़े हो जाओ, पीछे सेना पूरी जा रही है, हाथी घोड़े रथ, कृष्ण आगे भागता जा रहा है, कहां हाथ आए, जरासंध को हाथ नहीं आ रहा है। भगवान रणभूमि से भागे तो उनका नाम हो गया रण छोड़ रहा है। और बहुत सुंदर एक मंदिर है डाकोर में गुजरात में, उसका नाम है रण छोड़ रहा है मंदिर। रण छोड़ के आया मतलब युद्ध भूमि छोड़ के भागे, कहां भागे, एक पर्वत था बहुत बड़ा और पर्वत का नाम था परवर्षन पर्वत। परवर्षन का मतलब जिसके ऊपर इतनी बड़ा उसका पर्वत था कि उसके ऊपर हमेशा बादल होते थे, बरसात के बादल उसके ऊपर छाए रहते थे। जैसे आपके यहां जब देखते ना बादल आते हैं तो पहले मुरिया बाबा को ढक देते हैं, मुरिया की चोटी के ऊपर हमेशा बादल आते रहते हैं ना, यहाँ ये पहाड़ है ना आपका, बादल होते हैं ना उसके, तो परवर्षन बहुत घना बर्फ ऊपर चढ़ गए कृष्ण बलराम, ऊपर चढ़ गए, बहुत जगह ढूंढा नहीं मिले, चारों ओर से आग लगाया और अब यहां मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण बलराम उस पर्वत से कूदे, क्लाइम फ्रॉम देयर, जंप मारा सीधा वहां से द्वारका जाके पहुंचे। बोला भागे क्यों थे रण से, बोला एक तो ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी, दूसरा बहुत इमरजेंसी काम हो गया था। क्या इमरजेंसी काम था, विद्रभ देश से रुक्मणी का पत्र आने वाला था और रुक्मणी का उद्धार करना था, उसको स्वीकार करना था, तो लड़ाई में लग जाते टाइम लग जाता, तो रुक्मणी और शिशुपाल के जो विवाह होना था उसको रोका नहीं जा सकता था, तो भगवान ने रुक्मणी को स्वीकार करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए रणभूमि से भाग के और रण छोड़ राय जाके द्वारका के अंदर बसे। तो आज हमने भगवान को वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका पहुंचा दिया। अब आगे आएंगे तो भगवान के विवाह की बात करेंगे, द्वारका में कैसे 4-5 विवाह भगवान के हुए। अब अच्छी सीजन आएगी अब क्योंकि चतुर्मास पूरा हो रहा है, विवाह होंगे तो विवाह की सीजन की कथा करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अंतवंत में देहा अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधान देवान देव जो जानती मद्भक्ता जानती नाम भी। देवता का दिया हुआ फल नाश हो जाता है और देवता की पूजा करने वाला देवता के पास जाता है, मेरा भक्त मेरे पास आता है। तो कृष्ण भगवान की ये शिक्षा है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, आदर देना चाहिए।